क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का और रमज़ान का एक और दिन नसीब फरमाया। अल्लाह ताला बेहतरीन इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके टाइम का और आप सबकी तवज्जो और वक्त का बहुत बहुत जज़ाकल्ला। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन नंबर 5 शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलकतना व रज़कतना व अनकतना व फर्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल नास की इन डेप्थ स्टडी करते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल आयत नंबर 4 मुकम्मल कर ली थी। अ स्मॉल रीकैप कल की आयत के बारे में, हमने सूरतुल नास का दूसरा हिस्सा जिसको स्कॉलर्स मुस्तआदा मिनहू कहते हैं उसको शुरू कर दिया था, जो आयत नंबर 4 से आयत नंबर 6 तक चलता है। अलमुस्तआज़ा मिनहू की टर्म बताती है कि अब उस हस्ती का ज़िक्र आ रहा है, उस शख्सियत का ज़िक्र आ रहा है जिसके शर से हम बचना चाह रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इन तीन आयात में एक ही शर को मेंशन किया है। वो एक शर शैतान है जिसके वसवसे हमें कॉन्स्टेंटली अल्लाह की स्लेवरी से दूर करते हैं। शैतान का नाम यहाँ पर, शैतान की टर्म या इबलीस यहाँ मेंशन नहीं की गई है, बल्कि उसको सिफात के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ सिखाई कि हम दुआ ऐसे मांगें कि अल्लाह मैं आपकी हिफाजत में आती हूँ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उसके शर से जो ऑब्सेसिव विस्परर है, बहुत ज़्यादा वसवसा डालता है और पलट पलट कर आता है। हमने अलवसवास के कल 4 मीनिंग्स, कम से कम 4 मीनिंग्स तो मैंने आपको बताए ही थे। और अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि अलवसवास का मतलब नेगेटिव विस्पर आता है, इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। फिर आपको बताया था कि अलवसवास के अंदर ऐसा वसवसा, ऐसी आवाज़ के लिए वसवस इस्तेमाल करते थे अरब्स कि जिसकी आवाज़ आपको तवज्जो के साथ ग्रैब करती थी, यानी आपकी तवज्जो ग्रैब करती थी। तो अलवसवास ऐसा वसवसा जो आपकी तवज्जो को ग्रैब कर ले। तीसरा हमने देखा था, क्योंकि इसमें रूट वर्ड की 2 हरूफ की रेपिटेशन है, वाउसिन वाउसिन, तो रेपिटेशन की वजह से इसके अंदर कंटिन्यूटी है, एक काम एक वसवसा शैतान कॉन्स्टेंट डालता है। चौथा मफहूम आपको मैंने बताया था कि इसका पैटर्न, जो इसका अरबिक लैंग्वेज पैटर्न है, जो इसका बला उसके अंदर लुगतुल अरबिया में इसका पैटर्न है, वो हाइपरबोल की तरह कंसिडर किया जाता है, सीगतुल मुबालिगा उसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है अलवसवास शैतान वो है जो एक्सेसिव वसवसा डालने वाला है, और हर तरह का वसवसा जो है वो डालता है। फिर आपको मैंने कल की क्लास में ये बात भी टूवर्ड्स द एंड समझा दी थी कि शैतान का वसवसा अल्लाह ने ख़ुद कुरान में मेंशन कर दिया है कि मेरे बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको आयत बताई थी, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो शैतान है उसका इम्पैक्ट जो है, उसका वसवसा जो है, वो अल्लाह के बंदों के ऊपर असर नहीं करता, यानी शैतान अल्लाह के बंदों को नुकसान नहीं पहुँचाता। जहन में रखें, अल्लाह ने कहा है इन्ना इबादी, यानी जो ऑलरेडी अपने आप को अल्लाह की स्लेवरी में दे चुका है, दिन रात अल्लाह की इबादत करने की, दिन रात अल्लाह की इताअत करने की कोशिश करता है, दिन रात लोगों के साथ अपने रवैये को खुद फिल्टर करता रहता है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मुझे ठीक करना है, किस जगह मुझे जो है अपनी इसलाह करनी है, कहाँ मुझे सामने वाले की बात को इग्नोर करना है। ये है इबादी, जिसको अल्लाह कुरान में इबादी कहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शैतान की अथॉरिटी में कभी भी नहीं आते हैं, शैतान कभी भी उनको जो है ऐसा काबू में नहीं करता कि शैतान उनके हाथ पांव बन जाए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरे बंदों के ऊपर शैतान की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट से, इससे पहले कि मैं आयत नंबर 5 पर जाऊँ, ताकि एक सिनॉप्सिस भी आपका जो है वो हो जाए। स्कॉलर्स कहते हैं कि रमदान के महीने में शयातीन जो चेंड होते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में हदीस देखते हैं, आपको पता है आपने फरमाया कि जब रमदान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। आप में से किसी ने कल सवाल किया था कि ये जो आपने हमें करीन के बारे में बताया है, करीन के ऊपर हमने कल बात की थी, करीन असल में अरबी जुबान में कारा काफरा नून, एक ऐसा कंपेनियन जो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। और उसमें से हमने बात की थी कि अल्लाह ताला पैदाइश के साथ इंसान को एक फरिश्ता हिफाजत वाला और एक करीन शैतान की शक्ल में अपॉइंट कर देता है ताकि इंसान का इम्तिहान हो सके। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि ये जो हदीस आती है और इससे रिलेटेड जितनी भी इस चैप्टर में, इस बाब में अहादीस आती हैं कि शयातीन को चेन कर दिया जाता है, तो देखिए इसके बारे में स्कॉलर्स की दो राय मौजूद हैं। एक राय, और वो ये दो राय अपनी सारे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अहादीस पर ही बेस करके बनाते हैं। एक राय ये है, आपको बहुत से सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फिर सूरह फलक आएगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक राय स्कॉलर्स की ये है कि शयातीन जितने भी हैं, इबलीस से लेकर उसकी जितनी भी प्रोजेनी है, सब की सब चेंड हो जाती है, सबको बंद कर दिया जाता है। फिर ये जो इंसान रमदान में गलतियां करते हैं, ये असल में इंसान का नफ्स होता है जिसको शैतान के साथ रहने की आदत हो गई होती है। तो एक राय ये है। दूसरी राय आपको फुकहा में डेफिनेटली और मुहद्दसीन में मिलेगी, जहाँ भी इस तरह से दो राय हों, जहाँ मामला ऐसा है कि जिसका क्लैरिटी आपके और मेरे पास वाजे तौर पर नहीं है, और अब रसूल अल्लाह मौजूद भी नहीं है और अब किसी रसूल और नबी ने आना भी नहीं है, तो ऐसे में हम दोनों राय को अपने सामने रखकर आखिर में वल्लाहु आलम कह सकते हैं। तो दूसरी राय यह है कि जो शयातीन अल्लाह ताला चेंड करते हैं, यानी जिनको जकड़ दिया जाता है, वो मेजर शयातीन होते हैं, यानी इब्लीस है, उसके साथी हैं, आपने मुख्तलिफ नाम पढ़े हैं, एक वो शैतान जो नमाज में आकर हमें तंग करता है, इस तरह से वो मेजर शयातीन जो हैं दूसरी राय के मुताबिक उनको चेन कर दिया जाता है, और बाकी जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो अपनी जगह मौजूद रहता है। तो ये दोनों राय हैं, एक एक राय के मुताबिक करीन को भी बंद कर दिया जाता है इन दिनों में, दूसरी राय स्कॉलर्स की यह है कि नहीं, करीन की डेफिनेशन ही वो है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। और जब भी मुसलमान भी रमदान के महीने में भी गलतियां कर रहे होते हैं, जब भी मुसलमान रमदान के महीने में भी गुस्सा कर रहे होते हैं, जब भी मुसलमान जो हैं वो गुनाह भी कर जाते हैं, और दुनिया के अंदर भी अगर आप देखें तो रमदान का महीना तो पूरी दुनिया पर आता है ना, लेकिन आप देखते हैं कि इस महीने के अंदर भी दुनिया में तो कई गुनाह होते रहते हैं। तो जो दूसरी राय है स्कॉलर्स की, वो कहते हैं कि जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो मौजूद रहता है हर इंसान के साथ, और बाकी बड़े बड़े शयातीन जो हैं उनको चेन कर दिया जाता है। हाँ, डेफिनेटली हर मुसलमान क्योंकि रमदान के महीने में एक्स्ट्रा इबादत करता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वही फ़र्ज़ नमाज होगी उसको ज़रा ब्यूटिफाई करके पढ़ता है, थोड़ा कुरान की तिलावत ज़्यादा करता है, तो होता क्या है कि रमदान में ये मुसलमानों का करीन कमज़ोर हो जाता है। आपको कल अलखन्नास की अगर डेफिनेशन याद हो कि जहाँ वो ऑब्सेसिव विस्परर है, अलवसवास है, वहाँ वो अलखन्नास भी है, यानी वो रिट्रीट बैक भी करता है, और रिट्रीट उस वक्त करता है वो जाता वापस है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो रमदान के महीने में जब हम कॉन्स्टेंटली अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये करीन ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है। बाकी یہ غیب کے معاملات ہیں. ہم اسکالرس کی رائے کو سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم. تو یہ ایک آپ میں سے کسی بہن کا سوال بھی تھا قرین کے بارے میں, اور اس جگہ بات چل رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ بہتر ہے میں اس جگہ کر دوں. بات صرف اس مقام پر سورۃ الناس کے اور اس پورے سنوپسس کے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں تو یہ قرین ان کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا. تو بہتر طریقہ جو سورۃ الناس ہمیں سکھا رہی ہے کہ جتنا ہم اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے, اللہ کے ذکر سے جڑتے جائیں گے, ہماری پروٹیکشن ہوتی رہے گی. اور یہ جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے, یہ پروٹیکشن ہماری قلبی پروٹیکشن ہوتی ہے. دیکھیں, دل کی پاکیزگی بھی مسلمان کو چاہیے اور جسم کی پاکیزگی بھی مسلمان کو چاہیے. دل کی پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ جب آپ کی زبان ذکر کرتی ہے, جب آپ قرآن پر تفکر کرتے ہیں, جب آپ نیکیاں ایڈاپٹ کرنے لگ جاتی ہیں, آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں, دعائیں پڑھتی ہیں, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے قلب کی پاکیزگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قلب کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طہارت بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم شیطان جنات سے محفوظ رہ سکیں. اور اس میں آپ یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جو ہمیں طہارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. طہارت ہمارے دین کا ایک بہت ہی خوبصورت اینگل ہے, اور طہارت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بہتر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہقی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے وہ حالت طہارت میں سوتا ہے, یعنی وہ پیورٹی کے ساتھ سوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جو بھی رات میں سونے سے پہلے وضو کرے گا, ایک فرشتہ اس وضو کرنے کی وجہ سے, ناؤ دس از اے ایڈیشنل فرشتہ, وضو کرنے کی وجہ سے ایک فرشتہ اس انسان کے ساتھ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اور پھر یہ بندے کے ساتھ ہی رہتا ہے, اور فرشتہ دعا کرتا ہے. جب بھی اس بندے کی رات میں آنکھ کھلتی ہے تو یہ فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہم اغفر لعبدی کا فلان, اللہ اس بندے کو بخش دے, فإنه بات طاہرا, یعنی کہ اس نے رات کی ہے حالت طہارت میں. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ہمیں فزیکل طہارت کی طرف بھی یہ دین بہت انکریج کرتا ہے. رسول اللہ کی عادت تھی آپ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو یہ سورت سورۃ الناس انشاءاللہ ہماری اسپریچول کلینزنگ کرے گی جب ہم اس کو پڑھ کر سوئیں گے. اس لیے آپ نے کہا کہ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھ کر سوئیں, تو یہ آپ کی اسپریچول کلینزنگ ہو جائے گی. اللہ کا ذکر سورۃ الناس کی شکل میں دل کی طہارت کا باعث بنے گا, اور جب ہم سب رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے تو یہ ہماری فزیکل صفائی کا ذریعہ بنے گا. آگے مستعاذ من ہی کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے آیت نمبر 5 سورۃ الناس کی آ رہی ہے. فردر شیطان کا انٹروڈکشن ہے, الذی وہ جو یوسوسو فی صدور الناس, یہ کون ہے؟ وہ جو انسانوں کے صدر میں وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں پچھلی آیت میں آیا تھا من شر الوسواس الخناس, وہاں اسم آیا تھا الوسواس, یہاں الوسواس کا ہی ورب فارم وربل فارم اس کا فعل آیا ہے یوسوسو. دونوں فارمز یہ بتا رہے ہیں, اسم آلریڈی اپنے اندر ایک بڑی پاور رکھتا ہے, اور جس فارمیٹ کا یہاں پر یہ ورب آیا ہے یو وس ویسو, یہ حال اور مستقبل دونوں کو پریزنٹ کرتا ہے. فعل مدارے کہتے ہیں اس کو, اور یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر اپلائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے, الذی وس ویسو فی صدور الناس, وہ آج بھی وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں اور کل بھی ڈالتا رہے گا, یعنی اس کو تو انسان کے لیے امتحان بنا کر بھیجا ہی گیا ہے. تو وہ کانسٹنٹ وسپر کرے گا. اب وہ وسپر کہاں کرے گا؟ اس آیت نمبر 5 سے ہمارا چیپٹر جو شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا اب چیپٹر ہے ویپن اینڈ وہیکل آف ابلیس. ویپن یعنی وہ کیسے ہم پر حملہ کرتا ہے, اس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے, اور اس کا وہیکل کیا ہے, کیا سورس استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس طرح سے اپنے دھوکے کا شکار کرتا ہے. تو तो यहाँ पर आया कि अल्लज़ी वसवसु फ़ी सुदूर नास, असल में वो अपना वेपन क्या इस्तेमाल करता है, वो इंसान के सदर में आकर वसवसा करता है। देखिए, हमने इस्तलाह पढ़ी है कल्ब, हमने इस्तलाह पढ़ी है सदर, जैसे यहाँ आ रही है, हमने इस्तलाह पढ़ी है फुआद। ये तीनों टर्म्स कुरान में आते हैं। सदर अभी सूरत नास में आ रही है, कल्ब फ्रीक्वेंटली कुरान में आता है, और फुआद कुरान में आता है। जनरली जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम इसका तर्जुमा तीनों का मोर और लेस सीना या दिल कर देते हैं। कल्ब, सदर और फुआद, अरबी में तीनों की अलग अलग कॉनोटेशन आती है। कल्ब का मतलब होता है, यू कैन से इट रेफर टू एज शिफ्टर। कल्ब जो है वो उलट उलटता पलटता है, अपनी कैफियत बदलता रहता है, उसकी कैपेसिटी बदलती रहती है। असल में शैतान इस कल्ब पर अटैक करना चाहता है, ये उसका टारगेट है, जहाँ पर उसने असल में इंसान को नुकसान पहुँचाना है। कल्ब, याद रखिएगा, जब भी याद रखिएगा कल्ब में क्यों आना चाहता है, कल वाली हदीस याद कर लीजिए। आपका कल्ब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे जिस्म में ब्लड पंप करता है। एंड वेरी रिलेटेबल हदीस ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द साइंस। हमें मालूम है कल्ब हार्ट वो ऑर्गन है जो पूरे जिस्म में ब्लड पंप करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदम मजरद्दम, शैतान इब्ने आदम के अंदर बिल्कुल फ्लो करता है। तो शैतान का टारगेट होता है कि वो आपके और मेरे कल्ब में आकर बैठ जाए, ताकि फिर ब्लड के साथ पूरे जिस्म में फैल जाए। ब्यूटिफुल कनेक्शन ऑफ साइंस एंड हदीस एट दिस पॉइंट। कल्ब उसका टारगेट होता है जिसमें वो आना चाहता है। और याद रखें, इसी कल्ब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना फी जसदी मुदगा अला इन्ना फिल जसदी मुदगा, आगाह हो जाओ, दिल में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सालुहत सालाहल जसदु कुल्लु, जब ये ठीक रहता है पूरा जिस्म ठीक रहता है, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, ये ख़राब होता है पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है, अला वाही अल कल्ब, आगाह हो जाओ, ये कल्ब है। दुनियावी लिहाज से फिजिकली भी दिल ख़राब हो जाओ, इंसान बीमार हो जाते हैं, और स्पिरिचुअली भी शैतान अंदर आकर बैठ जाए तो ये इंसान की स्पिरिचुअलिटी को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टेंटली दुआएं सिखाई हैं, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह हमारे दिल को निफाक से पाक कर दे। अब यहाँ कल्ब नहीं आया, अल्लज़ी वसवसु फी कल्ब नास नहीं आया, फी सुदूर नास आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मीनिंग अलग हो रहे हैं। अब जब मीनिंग्स अलग हो रहे हैं तो आप इसको समझें। देखिए, दो अलग अलग जगह हैं, दिल में विस्पर करना और सदर में विस्पर करना बिल्कुल अलग अलग है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। आपका घर है, एक होता है आपका मेन गेट, फिर आपकी उस मेन गेट के साथ बाउंड्री वॉल होती है, फिर एक छोटा सा बाग है, उसके बाद फिर आपके लाउंज का दरवाज़ा होता है। तो यूं समझ लीजिए कि जो आपका मेन गेट, बाउंड्री वॉल, आपका फ्रंट गार्डन, आपका बैकयार्ड है, ये पूरे का पूरा सदर है। और जो आपका मेन लाउंज का दरवाज़ा है, जिसको आप खोल के अपने घर में दाखिल हो जाती हैं, इट्स लाइक अ कल्ब। शैतान को इजाज़त है कि वो बैकयार्ड में आ सकता है, शैतान को इजाज़त है वो फ्रंट गार्डन में आ सकता है, शैतान को इजाज़त है वो इस सदर में कहीं भी घूम सकता है। पर शैतान अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से कल्ब के अंदर, आपके लाउंज के दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। जब वो कल्ब के अंदर नहीं आ सकता है, तो अब इसका मतलब क्या है कि दिल के अंदर जब भी शैतान आएगा, उसको एक्सेस आपने और मैंने ही दिया है, वरना उसको एक्सेस नहीं मिलता। शैतान को एक्सेस मिलता है सिर्फ और सिर्फ हमारी इजाज़त से। अगर हमने अपने दिल को नेकी से, ईमान से नहीं सजाया हुआ, तभी वहाँ शैतान आकर बैठ जाता है। سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس نے ایمان کو، جس نے اسلام کو، جس نے اللہ کی فرما برداری کو محبوب کر لیا، اس کے دل میں اللہ کا ذکر اس کے دل کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ذکر کی انرجی اب شیطان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتی۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان صرف اور صرف ہم انسانوں کے صدر میں پھونکے مارتا ہے، دل میں انٹرنس اس کو ملتی ہے جب وہ دل کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے۔ تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نے اپنا سٹیٹ آف ایمان اب خود چیک کرنا ہے۔ جب گناہوں کی طرف اٹریکشن ہوگی، یاد رکھیے آپ کے قلب کے اندر شیطان کو آنے کا ایکسس آپ نے خود دے دیا۔ جب اللہ کی نافرمانی زندگی میں آ جائے گی، قلب کے اندر آنے کا ایکسس شیطان کو ہم نے خود دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس صورت میں بہت خوبصورت ہماری اسٹرینتھ بتا دی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان سے۔ شیطان چاہے جن ہے، چاہے وہ فزیکلی زیادہ پاورفل ہے، لیکن وہ صرف تمہارے صدر تک تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مین گیٹ سے اندر نہیں آئے گا جب تک کہ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں کر لو گے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور انکلینیشنز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا ہم نے اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے نیکیوں کو اپنایا ہوا ہے۔ اللہ نے شیطان کو انسان کے دل کا ڈائریکٹ ایکسس نہیں دیا، اور اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور میں کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں دعا بھی دے دی ساتھ ساتھ کہ کوشش تم کرو گے، ایمان کو تم بڑھاؤ گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی اوبیڈینس کے ساتھ ساتھ زبان سے یہ سورۃ الناس ادا کرو گے، تاکہ شیطان کا آبسیسو وسپر جو ہے وہ صرف صدر میں گونجے تو، بٹ تم اس کو اگنور کرنے کی، اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آگے سورۃ الناس کی آخری آیت آ رہی ہے جو المستعاذ منہ کا بھی آخری پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان وہ ہے جو آبسیسو وسپرر ہے، جہاں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو الخناس وہ پلٹ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کی زبان اللہ کی یاد کو چھوڑتی ہے، دل اللہ کی یاد کو چھوڑتا ہے، جسم اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے، ہی ریٹریٹس بیک۔ اور وہ کیسے انسان پر حملہ کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمارے صدر کے اندر آ کر پھونکیں ڈالتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے اور شکوک ڈالتا ہے۔ اور وہ شیطان ہوتا کیسا ہے، یعنی کتنی طرح کا شیطان ہوتا ہے؟ آیت نمبر 6 میں فرمایا سورۃ الناس کی، من الجنتی والناس، یعنی یہ الوسواس کرنے والا، الخناس رکھنے والا، یہ یوسوس فی صدور الناس والا کون ہے؟ من الجنتی والناس، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ آیت کو سامنے رکھیں گی تو من الجنتی میں پہلے جن آیا ہے اور پھر والناس آیا ہے۔ عربی کی اتنی خوبصورت ایکسپلینیشنز ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے جائیں اور آپ کو وہ امیز کا شکار، او کا شکار کرتے جائیں۔ اسکالرز نے یہاں تک آیت کی گہرائی پر بات کی ہے، ایکسپلینیشن دی ہے کہ آیت نمبر 6 کو پڑھیں سورۃ الناس کی تو کس کو پہلے بیان کیا اور کس کو بعد میں بیان کیا۔ من الجنتی والناس، تقدیم پر کون ہے؟ جن، اور تاخیر پر کون ہے؟ انسان۔ کیوں بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ انسان اس سے بھی کئی سبق لے سکے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک چھوٹا سا یہاں پر آپ کے سامنے احادیث کے حوالے سے ریفرنس دے دوں۔ طبرانی، امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، یہ جو تین کیٹیگریز ہیں یہ سب ابلیس کی ہی پروجنی ہیں۔ ایک پر والے، یعنی ان کے ونگز ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اور ہواؤں میں ادھر سے ادھر اٹھتے پھرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، वो कैटेगरी जन्नात की जो जानवरों की शक्ल एडॉप्ट कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी आपने बताई कि वो जन्नात जो आबाद होने वाले होते हैं या किसी आबादी को आबाद करने के बाद फिर छोड़ जाने वाले होते हैं। तो यही आबाद करने वालों और कूच कर जाने वालों के अंदर, तीसरी कैटेगरी के अंदर ही इंसान के साथ मौजूद करीन आ जाता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बिल्कुल सिंपल, वरना तो आपको बहुत डिटेल मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आखिरी आयत सूरत नास की बता रही है कि ये शैतान जो होते हैं ये जन्नात में भी होते हैं और ये इंसानों में भी होते हैं। हाँ, तकदीम और ताखीर को जहन में रखेंगे इस आयत को पढ़ते हुए, तो पहले जिन्न का जिक्र किया गया। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि याद रखे हर मुसलमान कि वसवसा ओरिजिनली शैतान का अमल है। आपको वसवसे आते हैं, आपको अपने आप को स्लैम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वसवसे आ रहे हैं, अपने आप को बताएं मैं अल्लाह की फरमाबरदार हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, ये शैतान है जो मुझे वसवसे डाल रहा है। फाइन, तो शैतान ओरिजिनली वसवसे का ओरिजिन है, वसवसा उसकी तरफ से आता है। हाँ, अब अल्लाह ने क्यों कहा मिनल जिन्नति वन नास के इंसानों में से भी होते हैं? देखें, बिल्कुल हम जानते हैं कि इंसान भी ईवल मशवरा देते हैं, लेकिन ये याद रखें जो इंसान आपको ईवल मशवरा दे रहा है वो उसने क्यों दिया, वो उस तक भी शैतान का पहुंचाया हुआ आइडिया था। शैतान इंसान को प्लेजराइज कर देता है। इबलीस को अगर आप याद रखें अल वसवास के रेफरेंस से, कि कोई मौका जाने नहीं देता, एक बहुत एक्सेसिव विस्पर करने वाला शैतान है, तो वो इंसानों को इस्तेमाल करता है एज अ व्हीकल। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर का नाम जो हम कर रहे हैं वो बताया है वेपन एंड व्हीकल ऑफ इबलीस। वेपन तो आपने आयत नंबर 5 में पढ़ लिया कि वो क्या करता है, वो सदर के अंदर फूंके मारता है, सदर में शकूक और शुभात डालता है। और उसका व्हीकल क्या है, उसका व्हीकल इंसान और जिन होते हैं। कभी वो जिन्नात को, करीन को इस्तेमाल करता है, कभी वो हमारे आसपास मौजूद इंसानों को इस्तेमाल करता है टू कंडक्ट हिज वसवसा। तो इबलीस है जो जिन्नात को इस्तेमाल करता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो आज के बाद अपने करीन से बचने के लिए मैक्सिमम नेकियां करते जाएं, अल्लाह की इताअत को अडॉप्ट करें, और सुबह शाम की दुआएं और सूरतुल फलक और सूरह नास को सुबह शाम का मामूल बना लें। ये तो बचाएगा इंशाल्लाह आपको आपके करीन जिन से, करीन शैतान से। जहाँ तक बात है मिनल जिन्नती के बाद वन नास की, ये जो अन्नास आया है, देखें आपके सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल में भी एक शैतान का वसवसा हो सकता है। इसलिए कि याद रखिए जो इंसान आपको आपके हकूक और फराइज से दूर करेगा वो उस वक्त शैतान का व्हीकल है। और चाहे वो आप खुद हों, जिस वक्त आप कोई ईवल थिंकिंग कर रही होती हैं, किसी ने आपको तंजो मजाक में ह्यूमरस वे में कोई बात कही, आपको पसंद नहीं आई। ज़्यादातर जब हम दूसरों पर मजाक कर रहे होते हैं, ह्यूमर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो हम बहुत ही सीधे साधे बन के कहते हैं ओ हो मैंने तो ऐसे ही ह्यूमरस वे में कह दिया था। लेकिन अगर आपको वही ह्यूमर खुद डाइजेस्ट करना पड़ जाए, जो दूसरा सामने वाला भी आपको जो है उसको मिरर इम्पैक्ट के साथ वो ह्यूमर दे दे, तो आप कहती हैं ओ हो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई, जुर्रत कैसे की ये कहने की, और ये तो सोचते ही नेगेटिव हैं, इनके अंदर तो नेगेटिविटी भरी भरी हुई है। जब आपके साथ ये फीलिंग्स होना शुरू हो जाएं, समझ लें यू आर बिकमिंग द व्हीकल ऑफ शैतान, आप शैतान का व्हीकल बन रही हैं। आप जो हैं इस वक्त शैतान की बातों में आ रही हैं, उसने आपको पपेट बना लिया है। तो अपने आप को भी बचाना है शैतान का व्हीकल बनने से, और अपने आसपास इंसानों को पहचानना है जब वो इंसान होने के बावजूद आपको और मुझे ईवल मशवरे दें, तो आपने और मैंने उनसे कॉन्स्टेंटली उस वक्त बचना है, कॉन्स्टेंटली बचना है। देखें हर वो आपका बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड जो आपको आपके माँ बाप की नाफरमानी की तरफ इनक्रेज करे। जब माँ बाप की मैं नाफरमानी की बात करती हूँ तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ बाप आपको फ़र्ज नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो अब आप जो हैं वो माँ बाप की मानेंगे। नहीं, डेफिनेटली हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम माँ बाप की नाफरमानी कहाँ करते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अल्लाह की नाफरमानी का कहे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको शरीयत को बहुत मामूली बनाकर प्रेजेंट करे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन दिलाए, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बीवी के होते हुए गैर औरत को अट्रैक्टिव बनाकर दिखाए। मालूम है उसको कि आपकी अपनी बीवी है लेकिन वो किसी गैर औरत को बहुत ही खूबसूरत बनाकर या बहुत ही उसकी तारीफें आपके सामने कर रहा है। या कोई भी बेस्ट फ्रेंड जो शौहर के होते हुए बीवियों को नामहरम मर्दों की तरफ माइल करे, ये सब शैतान के वहीकल हैं। हर वो औरत जो किसी भी सास को बहू के साथ नाइंसाफी करने के लिए इनक्रेज करे, वो शैतान का वहीकल है। हर वो फ्रेंड जो बहू को सास से बदतमीज़ी करने के लिए इस्तेमाल करे या इनक्रेज करे, वो असल में शैतान का वहीकल है। आज जो सेम सेक्स और सेम जेंडर रिलेशनशिप की बातों को जस्टिफाई करते हैं, प्लीज़ वो शैतान का वहीकल बने हुए हैं। हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारी अपनी फैमिली हो सकते हैं। हमारा काम है हम उनको इन्फॉर्म करें कि वो इस वक्त शैतान के वहीकल बने हुए हैं। लेस्बियन राइट्स और गे राइट्स की फेवर में मुसलमानों को कन्विंस करने वाले आज सिर्फ शैतान का, इबलीस का वहीकल बने हुए हैं। ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे, हमें शैतान को और शैतान नुमा इंसानों को पहचानना आसान हो जाएगा। यही काम शैतान का वहीकल आज मीडिया, मास मीडिया बना हुआ है। मास मीडिया आज इस वक्त शैतान के वसवसों को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है, ईविल थिंग्स को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है। ये है मिनल जिन्नति वन नास। जितना इसको आप डीपली समझेंगे उतना इंशाल्लाह आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो इन डेप्थ समझ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट मैं इस सूरत को मुकम्मल करते हुए जो बताना चाह रही हूँ, मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ बातें हर मुसलमान के दिल में सिर्फ इन तीन अल्फाज से उतारने की कोशिश की है कि याद रखें, हर वसवसा इबलीस की तरफ से होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने बता दिया सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट, वसवसा कहाँ से आता है? आपके दिमाग में आ रहा है या आपके दिल में आ रहा है या आपको जो है वो फील हो रहा है, एनीथिंग, याद रखें वो इबलीस की तरफ से आ रहा है, वसवसा शैतान की तरफ से है, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है कि ये वसवसा कहाँ तक आ सकता है, बस सदर तक आ सकता है, इससे अंदर दिल के अंदर आप उसको इजाज़त देंगे वरना नहीं आएगा। नंबर थ्री, अल्लाह ने इस वसवसे से बचने के लिए हमें ये पूरी दुआ भी सिखा दी है। और मिनल जितनती वन्नास में नंबर फोर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंसान को इंसान बनकर रहने के लिए आपस में इस वसवसे को पहचान कर जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है। इंसान से नफरत नहीं की जाती, इंसान के गुनाह से नफरत की जाती है। इंसान को बुरा भला नहीं कहते, इंसान जो शैतान का वहीकल बनकर बात कर रहा है उस बात को आप बुरा समझ सकते हैं। ये बात एम्बेडेड है इस आयत मिनल जिन्नति वन्नास में कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को बता दिया कि ऑल्दो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारी फैमिली तुमको ईवल मशवरे दे सकती है, तुम्हें शरीयत को मुश्किल बनाकर दिखा सकती है, इसलिए कि आज ऐसी बहुत से फैमिली में लोग होते हैं जो आपको कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम इस्लाम पर अमल करने लग गई हो ना, फिनेटिक हो जाओगी, हाफ क्रैक हो जाओगी। ये बातें जब वो बोलें तो अपने आप को कन्विंस कराएं, मेरे रब ने मुझे बताया है ये सिर्फ इस वक्त वहीकल बने हुए हैं, मुझे इन पर नहीं गुस्सा करना, मुझे उस इबलीस से अल्लाह की हिफाजत में आना है। और अल्लाह ने मिनल जिन्नति वन्नास में ये खूबसूरत पहलू हमारे लिए डिफाइन कर दिया है कि देखो, इंसानों से नफरत नहीं करना, गलत बात से, गलती से, गलत मशवरे से नफरत करना। जिस दिन हम इंसानों ने अल्लाह के कलाम की एक एक आयत को तफक्कुर और तदब्बुर से इस तरह समझना शुरू कर दिया, आप देखें, हम इंसानों की गलतियों पर, उनके ऊपर अपने अल्फाज के जख्म नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन हमारे अंदर ये बर्दाश्त आ गई, हम इंसानों को नफरत के साथ नहीं, हमदर्दी के साथ देखेंगे। जो आपको दुख दे रहा होगा, आप उसको शैतान का व्हीकल समझेंगी, आपको उससे हमदर्दी होगी, इसलिए कि वो सिर्फ आपको नहीं नुकसान पहुंचा रहा है इस वक्त अपने अल्फाज से, असल में वो अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। ये खूबसूरती है जो अल्लाह ताला ने मिनल जिन्नति वन नास के अंदर दी है। और एक और बहुत ही प्यारा एंगल जो स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं, सूरत उन नास मुसहफ की, कुरान की आखिरी सूरत, और कुरान की आखिरी सूरत का आखिरी लफ्ज मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह ने पूरे मुसहफ को वाइंड अप किया, तकमील किया अन्नास के लफ्ज के ऊपर, द मैन काइंड, अन्नास हमजा लाम के साथ है। क्यों? ये बता रहा है आखिरी लफ्ज। दुआ तो वैसे ही पूरी सूरत थी, अल्लाह ने बंदे को हिफाजत करने के लिए पूरी दुआ दे दी, लेकिन साथ साथ ये लास्ट वर्ड ऑफ द मुसहफ ऑफ सूरत उन्नास क्या मुझे और आपको बता रहा है? अल्लाह अपने बंदों से शदीद मोहब्बत करता है। जब भी हमारी नाफरमानियों के बावजूद हमें ऑनर करता है, हमारी नाफरमानियों के बावजूद हमें नेमतें अता करता है, हमें मौके पर मौके देता है, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ आर लाइव्स कि हम अर्रहमान की तरफ पलटने वाले बन जाएं, उसके इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के जिक्र के साथ और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ अटैच रहें। एक छोटा सा सिनॉप्सिस फाइनली, फिर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट सूरतुल फलक। देखिए, जन्नात से बचने के लिए अहदीस में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिकली आपको 6 ऑप्शंस बता रही हूँ ताकि आप आज ही अपनी ज़िंदगी में इनको शुरू कर लें। सिर्फ 6 पॉइंट्स फ्रॉम द अहदीस, ऑथेंटिक अहदीस। शयातीन और जिन्नात जो हैं, ये स्मोकलेस फायर से बने हैं। आपने कुरान में सूरत रहमान में पढ़ा है, अल्लाह ने इनको स्मोकलेस फायर से बनाया। इनमें से मेजॉरिटी कॉन्स्टेंटली इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इतना नुकसान पहुंचा भी सकते हैं अगर इंसान वल्नरेबल रहे कि ये इंसान को मार भी सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब भी हमें कुरान में ये दुआएं दी हैं और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इतने सारे तरीके बताए हैं कि हम कैसे इन ना नज़र आने वाले शर से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1, जो इंशाल्लाह आप आज से अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगी, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, जब आपको वसवसे आ रहे हों, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपकी कैफियत ऐसी हो रही हो कि जिसमें आप किसी पर फट पड़ेंगी, तो अपनी ज़ुबान से आहिस्ता आहिस्ता तआवुज़ पढ़ती रहिए, पोजीशन बदल लीजिए, जाकर पानी पिए अगर आपका रोज़ा नहीं है, खड़ी हैं तो बैठ जाएं, बैठी हैं तो लेट जाएं, और पढ़ती रहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन नसाई और इब्ने माजा में हदीस के मफहूम के मुताबिक सूरतुल फलक और सूरतुन नास को सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ने से इंसान जिन्नात के शर से महफूज रहता है। नंबर 3, रात में सोने से पहले, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से आप शैतान और शरीर शैतानों से महफूज रहते हैं। नंबर 4, सही तिरमिज़ी के मुताबिक, जामे अतिरमिज़ी के मुताबिक, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात सोने से पहले आप पढ़ लेंगी तो इंशाल्लाह आप और आपका घर अल्लाह की रहमत की प्रोटेक्शन में आ जाएगा। 5th, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शेइन कदीर दिन में 100 मरतबा पढ़ लिया, अगले दिन तक वो शख्स अल्लाह की हिफाजत में होता है और कोई जिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। सिक्स इन द फाइनल थिंग, अहदीस से पता चलता है कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान भाग जाता है, जन्नात भाग जाते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जो रुकिया की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रुकिया शरिया की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसमें आखिर में बिल्कुल अजान होती है। वन ऑफ द रीज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात हमें मेंशन की है कि अजान की आवाज़ सुनकर जिन शयातीन भाग जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शक हो रहा हो तो या तो अजान प्ले कर लीजिए घर के अंदर, या अजान बच्चे से दिलवा दीजिए। इंशाल्लाह क्या होगा कि आपके आसपास से शयातीन और जिन जो हैं वो चले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सूरत नास का इन डेप्थ स्टडी का एक छोटा सा ड्यूरेशन था, जिसमें हमने कोशिश करके, जी हाँ, मैंने जो आपको वो बताया था सोने से पहले वुदू का, वो भी ज़रा जहन में रखिएगा। तो इंशाल्लाह ये जो छोटा सा एक हमने इन डेप्थ स्टडी का सेशन किया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें से हमने जो मफहूम समझने की कोशिश की, जो हक है उसको हमारे दिल में उतार दे। कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे, कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह दरगुजर फरमा दीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।